नमस्कार भारत, मंगलवार 7 मार्च, मैं हूं निखिल रंजन। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया आदेश, 6 मुस्लिम देशों के लोगों को वीजा पर रोक लगेगी।
Executive order signed by the president earlier today, protecting the nation from foreign terrorist entry into the United States.
उत्तर प्रदेश के चुनाव में चल रही है अखिलेश यादव की आंधी, लालू प्रसाद का दावा,
अखिलेश के आंधी में उधिया गए, गायब हो गए, नरेंद्र मोदी से मोह भंग हो गया, कुछ यही नहीं बना रहा, बोला था क्योटो बनाएंगे, क्योटो अदालतें लेके हम खोज रहे, कहाँ क्योटो है।
खास रिपोर्ट में सुनिएगा, बिहार में शराबबंदी के बाद कैसे बढ़ गई है गांजा की खपत। अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी खेल की भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत 6 मुस्लिम बहुल देशों से अमरीका आने वाले लोगों को नए वीजा नहीं दिए जाएंगे। हालांकि जिनके पास पहले से वीजा या ग्रीन कार्ड हैं उन पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। ये आदेश इसी साल 16 मार्च से लागू होगा। पाकिस्तान का कहना है कि वो अफगानिस्तान से सटी अपनी सीमा को अस्थायी तौर पर खोलेगा। मंगलवार और बुधवार को तोरखम और चमन पर सीमा को खोला जाएगा ताकि सीमा के दोनों ओर फंसे लोग अपने अपने मुल्क लौट सकें। 2 सप्ताह पहले पाकिस्तान ने ये आरोप लगाते हुए अपनी सीमाएं बंद कर दी थीं कि चरमपंथी पाकिस्तान में हमला करने के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीते महीने सिंध प्रांत में मशहूर सूफी संत लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह पर हमला हुआ था जिसमें 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयब अर्दवान की उस टिप्पणी का कड़ा विरोध किया है जिसमें उन्होंने जर्मनी के अधिकारियों की तुलना नाजियों से की थी। इससे पहले जर्मनी ने देश में आयोजित उन रैलियों पर रोक लगा दी थी जिनमें तुर्क नेता भाषण देने वाले थे, जिसके बाद अर्दवान ने ये आरोप लगाए थे। अर्दवान इसी साल अप्रैल में संविधान में अहम बदलाव लाने संबंधी जनमत संग्रह कराने वाले हैं जिसमें जर्मनी में रहने वाले लाखों तुर्क भी वोट दे सकते हैं। Angela Merkel ne kaha?
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, solche deplatzierten Äußerungen kann man
स्पष्ट तौर पर कहूं तो मैं इस तरह की बेतुकी टिप्पणी पर कुछ नहीं कह सकती। ऐसे बयान को किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता, वो भी तब जब तुर्की में राष्ट्रपति शासन लाने के लिए जनमत संग्रह के लिए अभियान कराया जा रहा हो। ये परेशान करने वाला है और मुझे लगता है कि ये दुख पहुंचाने वाला है, क्योंकि नाजियों के साथ तुलना का मतलब है हम मानवता पर किए नाजियों के भयानक अत्याचारों को महत्वहीन बना रहे हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। थाईलैंड में पशु चिकित्सकों ने एक कछुए का ऑपरेशन कर उसके पेट से 900 से अधिक सिक्के निकाले हैं जो उसने निगल लिए थे। थाईलैंड में कई लोगों का मानना है कि कछुए पर सिक्के फेंकने से लंबी आयु मिलती है। इतनी संख्या में सिक्के निगलने के कारण कछुए का नाम ही बैंक पड़ गया था। कछुए को बचाने के लिए किया गया ऑपरेशन 7 घंटे तक चला। डॉक्टरों का कहना था कि सिक्कों का भार इतना हो गया था कि इस कारण उसके खोल का निचला हिस्सा फटने लगा था और उसे तैरने में तकलीफ हो रही थी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों की टीम के एक सदस्य पाशाकोन ब्रिक्सावन ने बताया, नतीजे संतोषजनक हैं, अब ये बैंक पर है कि वो कितने समय में पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है। ये एक बड़ा ऑपरेशन था और उसे ठीक होने में कुछ वक्त तो लगेगा। ये थे डॉक्टर पाशाकोन ब्रिक्सावन। इसराइल की संसद ने एक कानून को मंजूरी दे दी है जिसके तहत इसराइल पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करने वाले विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई की जा सकेगी। इस नए कानून के तहत इसराइल पर रोक की अपील करने वालों या ऐसी किसी मुहिम का समर्थन करने वालों का वीजा या रहने का परमिट नहीं दिया जाएगा। यह बैन कब लागू होगा इस पर अभी अधिक जानकारी नहीं मिली है। माना जा रहा है कि इस कानून के जरिए बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट और सैंक्शंस समूह के सदस्यों को निशाने पर लिया जा रहा है जो इसराइल पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। इसराइल के अनुसार ये समूह देश को बर्बाद करना चाहता है। जिम्बाब्वे सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को साल 2016 का बोनस कैश में देने के लिए राजी हो गई है। ये फैसला सरकार के खिलाफ कड़े प्रदर्शन होने के बाद आया है जिनमें नर्सें भी शामिल थीं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो पर मंगलवार की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार सुबह एक नया आदेश जारी किया है जिसके अनुसार 6 मुस्लिम बहुल देशों से अमरीका आने वालों को अब नए वीज़ा नहीं दिए जाएंगे। वीज़ा जारी करने पर ये रोक जो है वो 90 दिनों के लिए लगाई जा रही है, लेकिन जिनके पास पहले से ही वीज़ा या ग्रीन कार्ड हैं उन पर कोई रोक नहीं लगेगी। नया आदेश 16 मार्च से लागू होगा। पूरे ब्यूरो के साथ मानसी दास।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये आदेश सूडान, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया और यमन से आने वालों पर लागू होगा। जनवरी में जारी किए गए आदेश में इस सूची में इराक को भी रखा गया था, लेकिन इराक का नाम सूची से हटा लिया गया है। साथ ही हवाई अड्डों पर पिछली बार की तरह अफरा तफरी ना फैले इसके लिए सभी एजेंसियों को 10 दिन का वक्त दिया गया है। ये नया आदेश 16 मार्च से लागू होगा। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा,
The executive order signed by the president earlier today, protecting the nation from foreign terrorist entry into the United States.
आज राष्ट्रपति ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है उससे अमरीका में विदेश से आने वाले आतंकवादियों पर रोक लगेगी और ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में अहम कदम है। राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो देश के नागरिकों की रक्षा करें और इस ऑर्डर के साथ लोगों की सुरक्षा के लिए वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा के प्रति खतरे बढ़े हैं और यह साधारण सी बात है कि हम रक्षा के लिए बने अपने उपायों का पुनः मूल्यांकन करें और उनका पुनः निर्धारण करें। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के शब्द। इस आदेश के तहत ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेगा और इस दौरान सूची में शामिल हर देश की तरफ से मुहैया करवाई गई जानकारी की जांच होगी। उसके बाद उन देशों को जानकारी जुटाने की अपनी प्रक्रिया में बेहतरी लाने के लिए और 50 दिन दिए जाएंगे। आदेश के तहत अगले 120 दिनों तक अमरीका के शरणार्थी कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, लेकिन जिन शरणार्थियों को पहले से ही अमरीका आने की मंजूरी मिल चुकी है उन्हें नहीं रोका जाएगा। नेशनल ईरानियन अमरीकन काउंसिल के त्रिता पारसी का कहना है कि ये आदेश भ्रामक है और इससे अमरीका सुरक्षित नहीं होगा।
None of the nationals of these 6 countries that are targeted by this ban have actually conducted acts of terrorism on US soil that have resulted in any American deaths.
जिन देशों को इस आदेश के तहत निशाना बनाया गया है उन देशों के लोगों ने कभी अमेरिका की धरती पर ऐसी किसी चरमपंथी गतिविधि को अंजाम नहीं दिया है जिसमें किसी अमेरिकी नागरिक की मौत हुई हो। होमलैंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट भी बताती है कि चरमपंथ का पूर्वानुमान राष्ट्रीयता से नहीं लगाया जा सकता। नेशनल ईरानियन अमेरिकन काउंसिल के त्रिता पारसी के शब्द। ट्रंप प्रशासन के अनुसार इस आदेश में पहले के मुकाबले कई बदलाव हैं और इसका मकसद भी आतंकवाद प्रभावित इलाकों से जुड़े लोगों को अमेरिका से तब तक बाहर रखना है जब तक सरकार वीजा प्रणाली और शरणार्थियों की जांच प्रक्रिया पर आश्वस्त नहीं हो जाती। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन को उम्मीद है कि इन बदलावों की वजह से इस आदेश को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। अमरीकी राष्ट्रपति के नए आदेश पर और जानकारी के लिए कार्यक्रम में शामिल करते हैं वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय को। ब्रजेश, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये नया आदेश है उस पर अब तक किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है?
देखिए, मानवाधिकार गुटों की तरफ से अभी भी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है और उनका कहना है कि ये आदेश अभी भी एक नए स्वरूप में मुसलमानों पर लगाया हुआ प्रतिबंध ही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना था कि हजारों परिवारों में डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा करेगा और एक बार फिर से मुसलमानों के खिलाफ नफरत को एक नीति की शक्ल देगा। वहीं न्यूयॉर्क के जो डेमोक्रेट सेनेटर है चक शूमर, उन्होंने इसे बुरी भावना से प्रेरित और अन अमेरिकन नीति कहा है। वहीं कांग्रेस में रिपब्लिकन में से कई थे पिछली बार जो खुलकर इसके खिलाफ आए थे, इसकी आलोचना की थी। उनकी प्रतिक्रिया इस पर काफी हद तक चुप्पी वाली है, यानी एक तरह की मौन सहमति है आप कह सकते हैं। स्पीकर पॉल रायन ने जरूर इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बताया है और मंगलवार की सुबह कुछ गुट व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया पिछले आदेश के बाद नजर आई थी वो नहीं है।
ब्रजेश, एक अहम बात यह है कि इराक को प्रतिबंध वाले देशों से बाहर कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा और क्या अलग है इस नए आदेश में? और दूसरी बात यह कि क्या ये अगर अदालत में चुनौती दी गई तो क्या ये उस चुनौती को सह पाएगा?
देखें, काफी हद तक माना जा रहा है कि इस जो दूसरा आदेश है इसको उसी तरह से बनाया गया कि अदालत में अगर कोई चुनौती आती है तो ये उसके सामने ठहर सके। आपने जो नई चीजों की बात की, पहला आपने सही जिक्र किया कि इस बार 7 की जगह 6 देश हैं, इराक इस लिस्ट से बाहर है। दूसरा, इस बार इन देशों से आने वालों में से जिनके पास पहले से ग्रीन कार्ड या वीजा है उन्हें नहीं रोका जाएगा। तीसरा, सीरिया से जो आने वाले शरणार्थी हैं जिन्हें पहले से मंजूरी मिल चुकी है उन्हें नहीं रोका जाएगा और साथ ही सीरिया के शरणार्थियों पर भी दूसरे देशों से आने वाले शरणार्थियों की तरह ही 120 दिन की ही रोक लागू होगी, न कि अनिश्चितकालीन जो पिछले आदेश में था। चौथा, इस बार यह आदेश फौरन लागू किए जाने के बजाय 10 दिनों में लागू होगा, जिससे तमाम एजेंसियों को आपस में सुनियोजित तरीके से और एक तैयारी करने का वक्त मिल जाए। और पांचवा, इस बार प्रतिबंधित मुसलमान बहुल देशों से ईसाई शरणार्थियों को आने देने की जो बात थी वो हटा दी गई है। और जो बात आपने कही शुरू में अदालत वाली बात, ये काफी हद तक माना जा रहा है उसी वजह से है कि धर्म के आधार पर ये आदेश भेदभाव कर रहा है, ये कहकर कोई अदालत में इसे चुनौती नहीं दे सके।
बहुत शुक्रिया वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय इस पूरी जानकारी के लिए। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। और आइए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां चुनाव की जो बयार है वो लगातार पिछले एक महीने से बह रही है और अब आखिरी चरण का चुनाव सामने आ गया है। एक दिन बाद चुनाव होने हैं, यानी कि 8 मार्च को 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन क्षेत्रों में प्रचार थमने के पहले सभी पार्टियों के नेता जोर लगाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगातार तीसरे दिन प्रचार किया। उन्होंने एक रैली भी की और विरोधी दलों पर तीखा हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी कल ही मतदान होगा। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी पटना से चलकर कल वाराणसी पहुंचे थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में रैली की। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय से बातचीत में लालू प्रसाद यादव ने गठबंधन की जीत का दावा किया।
पूरा गठबंधन के पक्ष में लहर है, सारा ग्रास रूट एकदम एक तरफा अखिलेश जी के पक्ष में है और नरेंद्र मोदी बुरी तरह से असेंबली सेगमेंट जितना है वाराणसी में हार रहे हैं। यहाँ पर अभी 3 मीटिंग हमने किया बनारस से, लगभग 325 सीट से अखिलेश जीतेंगे, दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि सब लोग उब चुके हैं नरेंद्र मोदी से। जिन लोगों ने विगत चुनाव में वोट भी दिया था नरेंद्र मोदी को, वो लोग बहुत शिथिल हैं और जितना भी हार्ड कोर वोट था वैश्य समाज का, ट्रेडर्स का, व्यवसायी का, सुनार का, ये जो नोटबंदी हुई इससे सबकी धीरे टूटी है, किसान परेशान हुए हैं, इसी बीच में चुनाव आया, ऐसा खमियाजा इनको भोगना पड़ रहा है। 4 दिन से पूरा मंत्रिमंडल लेके बनारस में घूम रहे हैं, नुकड़ नुकड़ गली गली जा रहे हैं, देवी देवता के स्थान पर जा रहे हैं।
नरेंद्र मोदी भी रोड शो में, उनकी भीड़ तो काफी दिखी और उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंधी चल रही है।
ना, आंधी में उधिया गए, अखिलेश के आंधी में उधिया गए, गायब हो गए। और अखिलेश का जो यहाँ हुआ रोड शो हुआ या जो भीड़ सभा हो रही है, हम लोग की जितनी सभा 50 मीटिंग हमने किया है, हमने देखा है, बिल्कुल नरेंद्र मोदी से मोह भंग हो गया। बनारस में तो झूठ चाट रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, कुछ यही नहीं बनारस बोला था क्योटो बनाएंगे, क्योटो अदालतें लेके हम खोज रहे हैं कहाँ क्योटो है, गंगा मैया खोज रही है कि मेरा बेटा कहाँ गया। तो ये तो नरेंद्र मोदी फासिस्ट लोग है, देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, काला धन भी 1 पैसा नहीं निकाल पाया, नहीं लाया स्विस बैंक से, तो सारे लोग नाराज हैं।
आपको लालू जी क्या लग रहा है कि जो दावे अभी तक नरेंद्र मोदी ने किए हैं वो दावे बनारस में और उत्तर प्रदेश में धरातल पर नहीं दिखे आपको?
नहीं, नरेंद्र मोदी या अमित शाह उनके गुरु जो दावे कर रहे हैं ये साइकोलॉजिकल वार है, मतलब एक तो साइकोलॉजिकली मतलब लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हो, ये इतना दबाव हो गए हैं कि वोटरों को कमनलाइज करने का बहुत कोशिश किया, गोरखपुर में माइनॉरिटी के मोहल्लों में जाके जय श्री राम का नारा लगाया और चारों तरफ कब्रस्तान और श्मशान की चर्चा की, लेकिन न हिंदू सुन रहे हैं न मुस्लिम, बिल्कुल इनको नकार दिया है लोगों ने।
लालू जी, लेकिन एक तरफ दावा ये भी किया जाता है कि अखिलेश यादव ने भी कोई काम नहीं किया, परिवार में झगड़ा अलग था, तो आपको क्यों लग रहा है कि अखिलेश यादव को लोग चुनने जा रही है?
कोई झगड़ा नहीं, अखिलेश ने जितना काम किया उतना शायद ही कहीं काम हुआ हो, चाहे बिजली का हो, रोड का हो, किसानों का हो, लैपटॉप देने का सवाल हो, पेंशन देने का हो, महिलाओं का सवाल हो, या अस्पताल हो, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, अखिलेश ने बहुत काम किया, मेट्रो लाया और गोमती नदी को बढ़िया बना दिया, आगरा से लेकर के SFI होते हुए 6 लेन रोड एकदम 18 महीना के अंदर बन गया, उस पर मीग
अब प्लेन फाइटर प्लेन को भी लैंड करा दिया। काम पर सेक्टर नरेंद्र मोदी नहीं करते, ये काम तो कुछ किए नहीं और फ्रंट पर फेल हो गए। एक भी काम रहता तो लोग बोलते कि हाँ अब ये समूचा में गैस का दाम बढ़ गया, एटीएम पेटीएम ये सब बोल करके आज देश की गरीब जनता अनऑर्गेनाइज मजदूर 40 करोड़ इस देश में सब मारे मारे चल रहे हैं। जो बाहर में काम करने जाते थे लुधियाना में बम्बई में वो समूचा घर पर लौट गए हैं, सारे लोग खिलाफ हो गए।
11 तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है, क्या इससे आगे जो 2019 में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए भी आप कोई संकेत लेने की कोशिश में
है? उत्तर प्रदेश का ही चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव हो रहा है और इनको पलटी मारेंगे हम लोग और यहाँ की जनता, और इनको उल्टा गिनती शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी को 11 तारीख के रिजल्ट के बाद इनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुश्तैनी घर भी पहुंचे। वो वहां करीब 20 मिनट तक रुके। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने ही कल लाल बहादुर शास्त्री के बेटे और कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री से बात की और पूछा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम को किस तरह देख रहे हैं।
प्रधानमंत्री का वहाँ शास्त्री जी के पुश्तैनी घर पे जाना, उनके स्मारक पे, तो उसका तो मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन उसमें केवल दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली तो ये कि जब चुनाव अभियान चरम सीमा पर है तो इस समय उनका जाना थोड़ा सा मन में संदेह पैदा करता है, जो वहाँ जाने का पर्पज़ है वो थोड़ा सा संदेहपूर्ण हो जाता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार करीब 3.5 साल के बाद वो शास्त्री जी के पुश्तैनी मकान पर पहुँचे, इसके पहले तो कभी गए नहीं। दूसरी बात यह है कि शास्त्री जी का नाम प्रधानमंत्री जी मन की बात में लेते हैं, दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लेते हैं, अपने भाषणों में भी शास्त्री जी का जिक्र करते हैं, उनकी महानता के बारे में बताते हैं। लेकिन एनडीए सरकार के आने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, शास्त्री जी की स्मृति में कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई योजना, कोई इस तरह की स्कीम नहीं आई जिसे कहना चाहिए रचनात्मक कोई कदम नहीं उठाया गया सरकार द्वारा।
जी, और एक मांग आपने भी उठाई थी अनिल शास्त्री साहब, आप चाहते थे उनके मृत्यु से जुड़े हुए दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं।
हाँ, सार्वजनिक किए जाए, मैं आज भी उसको दोहराता हूँ कि उनके मृत्यु से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सार्वजनिक किया जाए, और सुभाष चंद्र बोस का जिस तरह किया गया ये भी किया जाए, उसमें कुछ मिले ना मिले लेकिन उसको अब दबा के रखने का कोई औचित्य बनता नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि शास्त्री जी की स्मृति को बरकरार रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सरकार को और कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए उनकी स्मृति में, जिससे कि उनकी स्मृति जो है ताज़ा बनी रहे। चाहे विश्वविद्यालय नया बनाए, वोकेशनल ट्रेनिंग की और स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक चेन बनाया जा सकता है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस का जिसका नाम शास्त्री जी पर रखा जा सकता है, और कई ऐसी बात।
जिस तरह से कांग्रेस के जो बड़े नेता जो आज कांग्रेस के मंच पर उतने प्रोमिनेंट तरीके से नजर नहीं आते, चाहे वो शास्त्री जी हों चाहे पटेल साहब हों, उनको सबको भारतीय जनता पार्टी के धीमे धीमे अपने प्रतीक चिन्हों की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है।
देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इस स्तर के और इस चोटी के नेता रहे नहीं, तो आज उनकी जो क्रेडिबिलिटी को मजबूत करने के लिए कि जनता में उनकी विश्वसनीयता बढ़े, जितने भी नेता वो जोड़ रहे हैं, चाहे सरदार पटेल हों चाहे सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री हों, इनकी क्रेडिबिलिटी पे, इनके इनकी ईमानदारी पर कभी भी, इनके सोच पर कभी भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। तो ऐसे नेता उनके पार्टी में कभी रहे नहीं, और इसके वजह से वो ऐसे नेताओं की वो तलाश करके उनको आगे रख कर वो राजनीति कर रहे हैं।
लाल बहादुर शास्त्री के बेटे और कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और आइए अब आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं कि आज दिल्ली के अखबारों में क्या कुछ छपा है। मानसी दास आ चुकी हैं स्टूडियो अखबार लेकर।
जनसत्ता के पहले पन्ने पर सजी है खबर आखिरी चरण के मतदान की, आखिरी चरण के चुनाव प्रचार की। लिखा है, आखिरी चरण में चरम पर प्रचार, जमकर वार पलटवार। अखबार ने यूपी में सत्ता समर शीर्षक के साथ सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अमित शाह के बयानों को छापा है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी पहले पन्ने पर बिटर कैंपेन एंड्स ऑन बिटर नोट, यानी कड़वाहट पर खत्म हुआ कड़वा प्रचार शीर्षक के साथ चुनाव प्रचार के थमने की खबर को छापा है। साथ ही छापा है उन्नी का कार्टून, जिसमें मोदी, मायावती, अखिलेश और राहुल गांधी हाथ जोड़े वोट मांगते दिख रहे हैं। लिखा है, लक के लिए अभी या फिर कभी नहीं। जनसत्ता में छवि एक और खबर आपको बता दूं, समाजवादी नेता और लोकसभा के पूर्व स्पीकर रवि रे का सोमवार दोपहर को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। 91 साल के रवि रे का कटक के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत कई प्रमुख दलों के नेताओं ने रवि रे के निधन पर शोक जताया है। अमर उजाला में छपी एक खबर के अनुसार, मुंबई हमले के साजिशकर्ता को सजा दिलाने के मुद्दे पर सालों से टालमटोल कर रही पाकिस्तान की सरकार के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल महमूद अली दुर्रानी ने माना है कि पाकिस्तान की जमीन से भारत में चरमपंथी हमलों को अंजाम दिया जाता रहा है। नई दिल्ली में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुंबई में 26 नवम्बर 2008 को हुआ चरमपंथी हमला पाकिस्तान से संचालित होने वाले समूह ने किया था। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर श्रोताओं को बता दूं, जिसमें शायद उन्हें दिलचस्पी जरूर होगी, जिन्होंने दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग और वहां के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बीच की जंग के बारे में देखा या पढ़ा है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र में मौजूदा एलजी अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ सत्र शुरू हुआ। एलजी ने 2 साल में केजरीवाल सरकार की उपलब्धियां गिनाई और अखबार का कहना है कि इस दौरान राजनिवास और दिल्ली सरकार के बीच दूरियां कम होती दिखाई दी। 8 मार्च को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आप सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे।
बहुत शुक्रिया मानसी दास अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब हमारी एक खास खबर, बिहार सरकार ने पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी है, लेकिन शराबबंदी के बाद से ही गांजे और दूसरे नशे की जो चीज़ें होती हैं उनकी खपत में बहुत भारी उछाल आया है। यहाँ अफीम की खेती भी बढ़ी है। आलम यह है कि साल 2016 में बिहार में नारकोटिक्स विभाग ने जितना गांजा जब्त किया था, साल 2017 के शुरुआती 2 महीनों में ही उसे 13 गुना ज़्यादा गांजा जब्त किया है। पूरा ब्यौरा दे रही हैं पटना से सीतू तिवारी।
बच्चे तो नहीं, बच्चे तो दूर हैं, तो कहाँ से आ पाएंगे?
बच्चे नाराज रहते हैं।
क्यों नहीं नाराज होंगे?
नाराज रहते हैं।
जिस घर का रोल मॉडल बिगड़ा रहा है।
49 साल के राम जीवन ने जब ये कहा तो उनकी आंखें डबडबा गईं। बिहार के डेहरी ऑन सोन में मिठाई की छोटी सी दुकान चलाने वाले राम जीवन को साल 1990 से ही शराब पीने की लत लग गई थी। अप्रैल 2016 में जब बिहार सरकार ने शराबबंदी की तो कुछ दिन तो वो बहुत बेचैन रहे, लेकिन बाद में उन्होंने गांजा लेना शुरू कर दिया। पटना के दिशा नशा मुक्ति केंद्र में बीते 3 महीने से भर्ती राम जीवन ने बीबीसी से बातचीत में कहा,
जैसे इंसान को भूख होता है तो खाने की ज़रूरत होती है, जब इसको रोज हम यूज करने लगते हैं, समय पर उसको खोजता है, मांगता है, डिमांड करता है, बॉडी ये चाहिए, नहीं मिलने से आत्मविश्वास डगमगाने लगता है।
दरअसल बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद से ही गांजे की खपत में उछाल आया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि विभाग ने साल 2016 में 496 किलो गांजा जब्त किया था, जबकि 2017 में सिर्फ जनवरी और फरवरी महीने में 6,884 किलो गांजा जब्त किया है। बिहार में गांजा 3 राज्यों से आता है, उड़ीसा के नवरंगपुर, मलकानगिरी, जयपुर, फुलगामी और ब्रह्मपुर से, जिसे स्थानीय भाषा में आंध्रा कहा जाता है। त्रिपुरा से आने वाले गांजे को मणिपुरी कहा जाता है। साथ ही बिहार में गांजा छत्तीसगढ़ से भी आता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर टीएन सिंह बताते हैं,
आवक भी बढ़ी है, खपत भी बढ़ी है और इससे जुड़े लोगों का इसमें एक्टिविटी भी बढ़ गया है और भी कुछ लोग, नए लोग भी जुड़ गए हैं। जो पुराने लोग इस धंधे से जुड़े हुए थे फिर से एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट और उसका पूरा हिसाब पता होता है।
जहां बिहार में गांजे की खपत बढ़ी है, वहीं अफीम की खेती में भी एकदम से इजाफा हुआ है। बीते 5 साल में अफीम की खेती के नष्ट करने के आंकड़े देखें तो ये उछाल साफ नजर आता है। साल 2014 में नारकोटिक्स विभाग ने 24 एकड़, 2015 में 13 एकड़, 2016 में 374 एकड़ अफीम नष्ट किया। वहीं साल 2017 में फरवरी माह तक 65 एकड़ में फैली अफीम की खेती को विभाग ने नष्ट किया है। अफीम और गांजा के अलावा नई चुनौतियों के तौर पर कफ सिरप, एल्फ्रेक्स, नाइट्रोसिन, वेलियम, प्रॉक्सीवॉन टैबलेट की खपत बढ़ी है, तो फोर्टविन मॉर्फिन इंजेक्शन का इस्तेमाल भी बढ़ा है। बीते 16 साल से नशा मुक्ति को लेकर काम कर रही राखी शर्मा कहती हैं,
और गांजा अभी क्योंकि इजीली अवेलेबल ड्रग है, कॉस्ट इफेक्टिव है कि कम पैसे में वो आसानी से मिल रहा है। इसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे जो 16 साल 15 साल के भी हैं, वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ट्राई कर रहे थे, पहले नॉर्मल सिगरेट लेते थे, अब सिगरेट में भरकर गांजा ले रहे हैं।
आरा के 30 साल के मोहन का चेहरा मासूमियत से भरा है। प्रेम टूटा तो उन्होंने साल 2000 में शराब पीना शुरू किया, शराब छूटी तो गांजे की लत पकड़ ली। वो बताते हैं कि 10 रुपए की गांजे की पुड़िया आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाती है, उसे रोजाना 25 ग्राम के लिए 180 रुपए खर्च करने पड़ते हैं।
दारू बंद होने के बाद गांजा का मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गांजा हो गया, हीरोइन हो गया, हम तो हीरोइन नहीं पीते हैं लेकिन गांजा पीते हैं। पुलिस पकड़ती है तो कभी कदाल गांजा छीन लेता है, बिक देता है पुलिस, इससे ज्यादा क्या करेगा।
पटना की दिशा नशा मुक्ति केंद्र की निदेशक राखी कहती हैं कि गांजे का नशा शराब से भी ज्यादा खतरनाक है।
जैसे गांजा इमीडिएट इफेक्ट तभी देगा जब आप बहुत ज्यादा अब्यूज कर रहे हैं, कम अब्यूज कर रहे हैं या कम मात्रा में ले रहे हैं, तो इनिशियली आपको नहीं दिखेगा उसका इफेक्ट। क्रेविंग जब बढ़ती चली जाती है और उनका आदत जो है वो पूरे लत में हो जाता है, तो फिर उनके मेंटल इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
बिहार में नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सामने आ रही इन चुनौतियों से मुंह मोड़े बैठी है। सरकार की तरफ से अगर जल्द ही कोई ठोस कदम ना उठाया गया तो बिहार के आने वाले भविष्य को नशे में डूबने से बचा पाना मुश्किल लगता है। सीतू तिवारी, BBC पटना।
और आइए अब सुन लेते हैं खेल समाचार वैभव दीवान से।
BBC खेल समाचार के साथ मैं हूं वैभव दीवान। क्रिकेट में आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन। कल का दिन खत्म होने पर भारत का स्कोर दूसरी पारी में 213 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। क्रीज पर मौजूद हैं अजिंक्य रहाणे 40 पर और चेतेश्वर पुजारा 79 रनों पर। फिलहाल भारत के पास 126 रनों की लीड है। बेंगलुरु की पिच को देखते हुए भारत को ऑस्ट्रेलिया के सामने कितने रनों का टारगेट सेट करना चाहिए, बीबीसी ने ये बात जानी क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन से।
जिस तरह से पिच आज तीसरे दिन खेली है, पहले घंटे में जब ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई, बोल्ड आउट हो गई, तो ऐसा लगा कि 170-180 भी बहुत डिफिकल्ट होगा चौथी पारी में बनाने के लिए। लेकिन जिस तरह से इंडिया की बैटिंग हुई है और जल्द सफलता नहीं मिली ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को, सफलता मिली भी तो तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड को ज्यादा मिली, तो मुझे लग रहा है कि 250 के करीब जो है अगर टारगेट हो तो वो एक सिक्योर टारगेट कह सकते हैं आप।
भारतीय समय अनुसार सुबह के 9:30 पर शुरू हो जाएगा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे दिन का खेल। अब बात बैडमिंटन की। बैडमिंटन में आज से ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज शुरू हो जाएगी। भारत की ओर से ये खिताब आज तक दो ही खिलाड़ियों ने पाया है, 1980 में प्रकाश पादुकोण ने और 2001 में पुलेला गोपीचंद ने। इस साल इस खिताब को जीतने का मौका पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के पास है। पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी दिनेश खन्ना बताते हैं,
ऑल इंग्लैंड में सभी राउंड जो है वो एक कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हर एक राउंड जो है वो आपका जो है मुकाबला वो काफी अच्छे खिलाड़ी से होता है, और अगर वो उस मुकाबले को पार कर जाती हैं तो कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छी उम्मीद कर सकते हैं पीवी सिंधु से हम।
अब बात टेनिस की। अनुभवी टेनिस स्टार लिएंडर पेस को अगले महीने उज़्बेकिस्तान के खिलाफ होने वाले एशियाई ओशियाना क्षेत्र के मुकाबले के लिए कल भारतीय डेविस टीम में बरकरार रखा गया। यह मुकाबला महेश भूपति के बतौर गैर खिलाड़ी भारत के लिए पहला होगा जिसमें रोहन बोपन्ना की वापसी होगी। BBC खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
अक्सर आप सुनते हैं कि बच्चे जो है वो सिक्के निगल लेते हैं और फिर समस्या खड़ी हो जाती है। थाईलैंड में एक कछुए ने 900 सिक्के निकल लिए। अब आप समझ सकते हैं कि उसकी तबीयत पर क्या इसका असर हुआ है। उसका 7 घंटे लंबा ऑपरेशन करने के बाद इन सिक्कों को बाहर निकाला गया है। ये खबर आप पढ़ना चाहें तो आइए bbchindi.com पर। और नमस्कार भारत में अब प्रमुख समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत 6 मुस्लिम बहुल देशों से अमरीका आने वाले लोगों को नए वीजा नहीं दिए जाएंगे। ये आदेश 16 मार्च से लागू होगा। पाकिस्तान का कहना है कि वो अफगानिस्तान से सटी अपनी सीमा को अस्थायी तौर पर खोलेगा ताकि सीमा के दोनों ओर फंसे लोग अपने अपने मुल्क लौट सकें। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयब एर्दवान की उस टिप्पणी का कड़ा विरोध किया है जिसमें उन्होंने जर्मनी के अधिकारियों की तुलना नाजियों से की थी। इसराइल की संसद ने एक कानून को मंजूरी दे दी है जिसके तहत इसराइल पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करने वाले विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई की जा सकेगी। इस नए कानून के तहत इसराइल पर रोक की अपील करने वालों या ऐसी किसी मुहिम का समर्थन करने वालों को वीजा या रहने का परमिट नहीं दिया जाएगा। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया मानसी दास ने और आज स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने। निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति। नमस्कार।